जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी,
अभी गाइए।
जय यशोदा नंदना, जय ब्रज जन रंजना। जय यशोदा नंदना, जय ब्रज जन रंजना। जय यमुना तीर बनचारी, जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीर बनचारी। जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। Thank you. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama Rama Ram Hare Hare
नाम संकीर्तन की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य अष्टोत्तर डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदा शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा आज सभी भक्तों का स्वागत है इस कौन चिपीवाड़ा में और आज हम लोग श्रवण करे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध तीन स्कंध का जो अध्याय है नंबर 5 और अध्याय का शीर्षक है श्री मैत्रेय मुनि से विदुर की वार्ता और आज लोग हम श्लोक नंबर लेंगे 2, 30 और 31 तो 30 का हम लोग उच्चारण करेंगे आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा और 31 खाली मैं ही बोलूंगा अहम तत्वादि कुर्वानान् मनोवैकारिकाद् अभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अर्था अभिवञ्जनं यथा अहम् तत्वादि कुर्वानान् मनोवैकारिकादभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अर्था अभिवञ्जनं यतः अहम् तत्वादि कुर्वानान् मनोवैकारिकादभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अर्था अभिवञ्जनं यतः अहम् तत्वादि कुर्वानाम् ननो वैकारिकाद्भुता वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः अहम् तत्वादि कुर्वानाम् वैकारिकाद्भुता वैकारिकाश्च ये देवा अर्था अभिव्यञ्जनं यतः अहम् तत्वादि कुर्वानाम् मनोवैकारिकादभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः माताजी मनोवैकारिकादभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः और कोई माता जी चलिए शब्दार्थ और अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। अहम तत्वाद मिथ्या अहंकार के सिद्धांत से विकुवण का रूपांतर द्वारा मनहा मन वैकारिकात् सत्व गुण के साथ अंततः क्रिया द्वारा अभूत उत्पन्न हुआ वैकारिकः अच्छाई से अंततः क्रिया द्वारा च भी ये सारे देवताः देवता अर्थ घटना संबंधी अभिव्यञ्जनम् भौतिक ज्ञान यतः स्रोत। अनुवाद मिथ्या अहंकार सत्व गुण के अंततः क्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं उसी सिद्धांत अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सत्व गुण के अंततः क्रिया के परिणाम है। तात्पर्य भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के साथ मिथ्या अहंकार की अंततः क्रिया घटना प्रधान जगत के समस्त वस्तुओं का स्रोत है। श्लोक नंबर 31 तेजस्निंद्रिया एवा ज्ञान कर्मा माहीन च। अनुवाद इंद्रिया निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम है। एतवा दार्शनिक चिंतन परत ज्ञान तथा सकाम कर रजोगुण के प्रधान उत्पाद हैं। तात्पर्य ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग मिथ्या अहंकार का प्रधान कार्य ईश्वर विहीनता है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नित्य अधीन अंश के रूप में अपनी स्वाभाविक वैधानिक स्थिति को भूल जाता है और स्वतंत्र रूप से सुखी बनना चाहता है, तब वह मुख्यतः दो तरह के कार्य करता है। सर्वप्रथम वह अपने निजी लाभ या इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करने का प्रयास करता है और दीर्घ काल तक ऐसा सकाम कर्म करते रहने के बाद जब वह हताश हो जाता है तो वह दार्शनिक चिंतक बन जाता है और अपने आप को ईश्वर जैसे स्तर पर समझने लगता है। श्री भगवान से तदाकार होने का यह मिथ्य विचार भ्रमक शक्ति माया का अंतिम पाश होता है, जो जीव को मिथ्य अहंकार के अधीन विस्मृत के बंधन में फंसा लेती है। मिथ्य अहंकार के पास से मुक्त का सर्वोत्तम उपाय है परम सत्य के विषय में दार्शनिक चिंतन की आदत का परित्याग करना। मनुष्य को निश्चित रूप से यह जान लेना चाहिए कि परम सत्य का साक्षात्कार अपूर्ण अहंकारी व्यक्ति के दार्शनिक चिंतन द्वारा कभी नहीं हो सकता। परम सत्य या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार ऐसे प्रामाणिक अधिकारी से उनके विषय में विनय तथा प्रेम पूर्वक श्रवण द्वारा किया जा सकता है, जो 12 महाजनों में से एक है, एक हो, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है। ऐसे प्रयास के द्वारा ही मनुष्य श्री भगवान के महामयी शक्ति की को जीत सकता है। यद्यपि अन्यों के लिए यह दुर्लभ है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में हुई है, श्रीमद् भागवत गीता में हुई है 7.14 में। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपिशा गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णु पदाय कृष्णा प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी प्रशाति देश तारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। मैं जानता हूँ आप सब लोग यहाँ पे थके हुए हैं, क्योंकि कल निर्जला एकादशी थी और सबकी बैटरी लो है। यहाँ पे सब लोग उत्साहित होंगे कि कब 9 बजे और कब हम लोग प्रसाद ग्रहण करें। तो देखिए, अभी ये जो संदर्भ चल रहा है इतना सुंदर, यहाँ पे जो विदुर जी हैं वो जब मैत्रेय मुनि से मिले हरिद्वार में गंगा के किनारे, तो उन्होंने उनका गुणगान किया। उनका क्यों? क्योंकि वो सीधा भगवान श्री कृष्ण से मिलकर आ रहे हैं, उनसे सीधा वो ज्ञान लेकर आ रहे हैं। जब भगवान उद्धव जी को दे रहे थे, उद्धव गीता दे रहे थे, बता रहे थे उनको, तो वो भी वहीं पर ही मौजूद थे। तो जब उन्होंने अप्रोच किया उद्धव जी को विदुर जी ने, तो एज अ एटिकेट और एज अ मैनर उन्होंने बोला, अभी देखिए मैत्रेय मुनि मुझसे कहीं ऊंचे हैं, कहीं वरिष्ठ हैं मुझसे, ठीक है, बहुत ऊंचे पायदान पे हैं, तो मैं आपको ये ज्ञान नहीं दूंगा, ये ज्ञान आप केवल उनके मुख से ही सुनिएगा, वो पास में ही है, हरिद्वार में ही है, अब वहां पे चले जाइए और उनके श्री मुख से सुन लीजिए। तो जब विदुर जी ने अप्रोच किया, उनका गुणगान किया, तो उसके बाद मैत्रेय मुनि ने भी उनका वेलकम किया, उनका स्वागत किया और दोनों ने एक दूसरे का गुणगान किया। उसके बाद सीधा ही बिना कुछ समय गवाए विदुर जी ने सीधा भगवान के बारे पूछा। बोले कि भगवान की कृष्ण कथा में कैसे जो व्यक्ति है अपना आनंद ले सकता है, और उन्होंने नाना प्रकार के और भी क्वेश्चन पूछे, 7-8-10 क्वेश्चन पूछे। उनमें से एक क्वेश्चन पूछा था सृष्टि के बारे में, कि सृष्टि का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, ठीक है ना, क्योंकि लोगों को क्या है कि जब भगवान की कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो सीधा ही भगवान के प्राइवेट अफेयर में चले जाते हैं। जो कि ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये समाज में जो प्रचलन चल रहा है भगवान के प्राइवेट अफेयर में जाना, ये तनिक भी सही नहीं है। ठीक है, भगवान अगर जो 10th कैंटो है वो भगवान का श्रीमुख बताया जाता है, खासकर जो गोपी गीत है, रास पंच अध्याय है, ये सब चल रहा है, मगर उनसे पहले देखे जो 9 स्कंद है वो भगवान की महानता के बारे में बताते हैं कि भगवान कैसे उन्होंने क्रिएशन किया। ठीक है, और कैसे अन्य प्रकार के जो देवी देवताओं हैं उन्होंने भगवान का उसमें सहयोग दिया, कैसे जैसे उस सहयोग में उन्होंने अपनी सेवा दी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो जब ऐसे ही एक प्रश्न आया कि क्रिएशन कैसे हुई, तो ये जो प्रसंग चल रहा है यहाँ पे मैत्रेय मुनि जी भी बहुत प्रसन्न हुए उनके इस प्रसंग से कि जो हमारे विदुर जी हैं उन्होंने बिल्कुल भी कुछ ऐसा वैसा सवाल नहीं पूछा, बहुत ही हाई लेवल का सवाल पूछा कि सृष्टि हुई कैसे। क्योंकि जब इंसान ये जल जाएगा कि भैया अगर क्रिएशन हुई है, अगर सृष्टि हुई है, तो इस सृष्टि को रचने वाले रचयिता भी तो है, अगर क्रिएशन हुई है तो उसका क्रिएटर भी तो है, जो इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैटर है जो कि आज की डेट में हमारे स्कूल कॉलेजों में बिना किसी प्रूफ के उसे पढ़ाया जाता है कि ये चीज सत्य भी है कि नहीं है। इसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, उस धमाके में इस सृष्टि का निर्माण हुआ। ठीक है ना, ये तो एक लॉजिकली वे में भी फिट नहीं बैठता है। अगर आप ऐसे भी देखें, जब धमाका होता है तो धमाके में किसी का आविष्कार होता है या किसी का विनाश होता है। जैसे दीपावली है, सबके पास आलू बम है, अनार बम है, इतने बड़े बड़े बम बजाते हैं। अब जिस स्थान पे अगर आप वहां रखते हैं, जब वो फटता है तो वहां पे कुछ आविष्कार होता है क्या? कोई शॉपिंग मॉल बन गया, कोई ना छोटा सा किसी का घर बन गया, किसी की गाड़ी आ गई उसको फटने से, होता है क्या? कभी नहीं होता। अगर आप वहां जाके देखेंगे वहां पे हल्का सा खड्डा हो जाता है, मतलब क्या हुआ, वहां पे विनाश हो गया। ठीक है, जब किसी धमाके से अगर विनाश होता है तो यहाँ पे लोग कैसे कह सकते हैं कि इतनी बड़ी सृष्टि एक धमाके से आई है, जिसे बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, जिसको पश्चात्य देशों में और हमारे हिंदुस्तान में भी खूब अच्छे से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, यही परम सत्य है बिग बैंग थ्योरी, इससे बड़ा सत्य कोई है ही नहीं। और जो मूर्ख लोग हैं वो लोग उसको फॉलो भी कर लेते हैं, बिल्कुल एक बिंदु हुआ, एक धमाका हुआ, फटाक से फटा, सब देखो झरने आए, पेड़ पौधे आए, सब सूरज भी टाइम से आ रहा है, चंद्रमा भी टाइम से आ रहा है, सबके बारे में अलग अलग मेंटल स्पेकुलेशन चल रही है। इसी मेंटल स्पेकुलेशन को काटने के लिए विदुर जी ने, उनको पता था कि कलयुग के लोग क्या क्या करेंगे, क्या क्या सोचेंगे, कि उन्होंने इसी को देने के लिए ये सब्जेक्ट मैटर को उन्होंने छेड़ा। अब बताइए ये क्रिएशन, ये सृष्टि कैसे हुई? जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एते चमसा कल्हा पुमसा कृष्णास्तु भगवान से, कि जितने भी सोर्स हैं इंकार्नेशन के, इंकार्नेशन के, इंकार्नेशन के, इंकार्नेशन, वो भगवान श्री कृष्ण ही है। ठीक है, इससे पहले के 3-4 श्लोकों में जो कि मैत्रेय मुनि जी ने बोला कि विदुर जी कि इस सृष्टि से पहले भी जो एकलौते व्यक्ति थे ना, जो जीवित थे और जो रह रहे थे सृष्टि के बाहर, वो भगवान श्री कृष्ण ही थे। क्योंकि जो चीज जिस चीज से बाहर रहेगा वही तो उसको बना सकता है, अगर वो उसके अंदर रहेगा तो कैसे बनाएगा? अगर मुझे ये बुक को तैयार करना है, मुझे इस बुक से बाहर होना पड़ेगा तभी तो मैं इसको तैयार कर पाऊंगा। तो उन्होंने शास्त्रीय प्रूफ दिया, जैसे कि कैंटो 2 में था अहम एवं एवाग्रसरे, ऐसे करके जो चतुर्श्लोकी का जो पहला श्लोक बताया कि मैं इससे पहले भी था, मैं अब भी हूं और मैं सृष्टि के बाद भी रहूंगा। ये भगवान ने क्लियर बताया इसके अंदर अपना श्रीमद भागवतम के अंदर चतुर्श्लोकी ब्रह्मा जी को, और वही सेम चीज मैत्रेय मुनि जी वो खुद ही रिपीट कर रहे हैं कि इससे भी पहले भगवान थे। और उसके बाद देखिए भगवान श्री कृष्ण है, उनके राइट हैंड साइड से पहले कौन कौन निकलता है, कौन सी एक्सपेंशन निकलती है, विस्तार निकलता है, बलराम जी का। ठीक है, और बलराम जी इनसे क्या निकलते हैं, फर्स्ट चतुर्व्यूह, प्रथम चतुर्व्यूह कौन कौन से हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्ना एंड अनिरुद्ध। ठीक है, मैं जानता हूं ये जो क्लास है ये बहुत फिलोसफिकल ही जाएगी, क्योंकि क्या करूं सब्जेक्ट मैटर ही इतना फिलोसफिकल है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो ये जो पहले चतुर्व्यूह है उसमें जो पहले संकर्षण है, ठीक है, उन संकर्षण में से निकलते हैं नारायण जी, और उन नारायण जी से निकलते हैं दूसरे चतुर्व्यूह, कौन कौन से हैं, सेम वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्ना, अनिरुद्ध, और उनमें से जो संकर्षण है, जो जो सेकंड चतुर्भुज के संकर्षण है, उनमें से निकलते हैं महाविष्णु। उनका नाम क्या है? एक और कार्णोदक्षायी विष्णु। क्या है? कार्णोदक्षायी विष्णु है। अब ये, और ये भगवान के तीनों पुरुष अवतार हैं, कार्णोदक्षायी विष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु और शिरोदक्षायी विष्णु। अब देखिए, अब महाविष्णु जी को, जो कि ये विष्णु तत्व है, तो इनके हिसाब से इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप ये सृष्टि का निर्माण करें, महाविष्णु जी। तो भाग महाविष्णु जी क्या करते हैं, जो प्रधान है, जिससे प्रकृति भी बोलते हैं, मेटीरियल नेचर भी बोलते हैं, उसके ऊपर ग्लांस करते हैं, श्री श्री राधा वल्लभ की जय, श्री गौरसाई की जय। जब महाविष्णु अपने नेत्रों से प्रधान मेटीरियल नेचर की तरफ देखते हैं, उसको इम्प्रेगनेट करते हैं, उनको इम्प्रेगनेट करते हैं दो चीजों से, एक है काला और एक है जीवा, दो चीजों से करते हैं। काला मतलब टाइम, जीवा मतलब लिविंग एंटिटी। और जब जीवा, प्रभु जी ध्यान दीजिए, यहां कुछ इंपॉर्टेंट बात चल रही है, यहां पे जो जीवा है, जीवा, जीवा के अंदर दो कॉम्पोनेंट आते हैं, जीवा अकेले नहीं आती है, जीवा दो चीजों के साथ आती है, एक अपनी नेचर और अपने डेस्टिनी के साथ, मतलब स्वभाव के साथ आती है अपने, ठीक है। तो जब उसके साथ करते हैं तो वहां पे जो मेटीरियल नेचर है वो एजिटेट होने लगती है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक भौतिक एग्जांपल देगा ताकि आपको समझ में आएगा। जैसे कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, ठीक है, आप समझ लीजिए कि ये जो भौतिक संसार है, एक तरह का एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर ताला लगा होगा उसके गेट के अंदर, मगर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का जो गोडाउन है ना, उसके अंदर क्या क्या है, रेत है, सीमेंट है, ईंटें हैं, ठीक है, लोहा है, सरिया है, नाना प्रकार के जो भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बिल्डिंग के लिए चाहिए ना, वो सब उसके अंदर बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं अभी वो प्रधाना स्टेट में है। तो जब भगवान, और बाहर से क्या लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। जब भगवान विष्णु अब उसको क्या करना है, अब उनको क्रिएशन करनी है, मतलब क्रिएशन का सामान ऑलरेडी गोडाउन में पड़ा हुआ है। जब उसको क्रिएशन करते हैं तो उनका ग्लांस जाता है ताले के पर, तो ताला खुलता है। तो जैसे ही वो ताला खुलता है और उसी गोडाउन के अंदर बैठे हुए हैं तीन मोड्स ऑफ मेटीरियल नेचर, भौतिक के तीन गुण बैठे हुए, कौन कौन से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अभी वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, अभी वो चल नहीं रहे हैं, पर जैसे ही भगवान का ग्लांस हुआ और वो हिलने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि जब टाइम जाएगा तो भी वो हिलना वहां पे शुरू करेंगे। तो ये जो भगवान का ग्लांस है ना, जो ताले पे पड़ता है और ये जब हिलना शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं महातत्व। कि जो प्रधान है, प्रधान बाद में मैनिफेस्ट होता है किसमें, महातत्व के अंदर, और जो महातत्व है वो आगे मैनिफेस्ट होता है फॉल्स ईगो के अंदर, जिसको बोलता है अहंकार, झूठा अहंकार उस अहंकार के अंदर होता है। अब उसी अहंकार के अंदर, अब जो अहंकार है वो तीन मोड्स नेचर के साथ, जो तीन है भौतिक जगत के गुण है, उनके साथ वो संग करता है, ठीक है। अहंकार सात्विक होता है, अहंकार राजसिक है, अहंकार तामसिक है, ठीक है। जो आज का जो श्लोक है 30 और 31, जो 30 है वो बताता है सात्विक अहंकार, और जो 31 है वो आपको बताता है राजसिक अहंकार, और जो 32 है वो आज बताता है आपको तामसिक अहंकार। तो आज हम सिर्फ दो श्लोक का ले रहे हैं, जो कि 30 और 31 है, जो कि क्या है, कौन कौन से अहंकार है, सात्विक और राजसिक। आज हम उसको दो को समझेंगे, वो एक्चुअल में है क्या। अब देखिए, अब ये जो तीसवां है, तीसवां के अंदर बताया गया है कि जब वही अहंकार जब सात्विक में आता है, जब सात्विक गुण के साथ जब वो मेल खाता है, तो उसमें से किस किस चीज की उत्पत्ति होती है, बताया गया है माइंड और नहीं, माइंड और डेमिगॉड्स। अब ये देखो ना, यहां पे लिखा हुआ है ना, 30 का, मिथ्या अहंकार सत्व गुण के अंततः क्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता भी घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं उसी सिद्धांत अर्थात मिथ्य अहंकार तथा सत्व गुण के अंत क्रिया के परिणाम है। जो माइंड और जो डेमिगॉड्स है वो क्या है, सात्विक अहंकार के उत्पत्ति है। और इसमें कौन से डेमिगॉड की बात हो रही है, इसमें किस डेमिगॉड की बात हो रही है। ये जो हमारी जो इंद्रियां हैं ना, जैसे आंख नाक कान जीवा, ये शीशन गुदा, ये सब जो है, इन सब के अलग अलग डेमिगॉड है। पलकों के अलग देवी देवता है, आईब्रोज के अलग देवी देवता है, वाचा के अलग है, नाक सूंघने के अलग है, कान के अलग है। अभी देखिए मैंने इसमें नोट बनाया है, ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से देवता किस किस के हैं। ईयर कान दिग देवता, उनका नाम है दिग देवता। आंखें सूर्य देवता। स्किन ठीक है, चमड़ी वायु देवता। नाक अश्विनी कुमार। जीवा वरुण देव। हाथ इंद्र देव। पैर उपेंद्रा। आवाज अग्नि ठीक है, गुदा मित्रा। जेनिटल्स शीशन प्रजापति। ये इन सब का भी आविष्कार होता है यहां पर। अब देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा यहां पे रोकूंगा। जैसे भगवान बताते हैं कि भूमि अपो नलो वायु खम मनो बुद्धि एह वचा अहंकार इदियम में भिन्न प्रकृति अष्टदा, कि ये जितने जो आठ प्रकार की जो चीजें हैं ना, पांच ग्रॉस और तीन सकल, मतलब कि पांच स्थूल और तीन सूक्ष्म है यहां पे, इन सब को मिला के ना इस भौतिक जगत का निर्माण हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आता है अर्थ। अर्थ को बताया गया था जो इस भौतिक जगत के जो ऊपर जो लेयर है ना अर्थ की, उसके ऊपर क्या आता है, पानी। ठीक है, अर्थ के ऊपर आता है पानी। पानी जो है वो अर्थ से 10 गुना बड़ा है, उसकी जो लेयर 10 गुना बड़ी है। और पानी से ऊपर क्या आता है, आग। जो आग है वो पानी से 10 गुना बड़ी है। ठीक है, उसके बाद आती है हवा। हवा जो है वो आग से 10 गुना बड़ी है। ठीक है, और उसके बाद ईथर, इसको बोलते हैं स्पेस। वो स्पेस है वो उससे भी बड़ा है। और उसके बाद आता है माइंड। माइंड जो है ईथर से भी 10 गुना बड़ा है। उसके बाद आते इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है, वो माइंड से भी 10 गुना बड़ी है। और जो फॉल्स ईगो, वो इंटेलिजेंस से भी 10 गुना बड़ी है। अहंकार, जो अहंकार जो बताया गया है, एक एक पतीले की तरह है, एक पॉट की तरह है, उसके अंदर सब चीजें रहती हैं, कुक होती हैं। तो मतलब जो अहंकार है इन सबको बांध के रखता है। जो अहंकार है वो इन सबको बांध के रखता है। ये देखिए, ये अहंकार का सबसे पहला स्रोत क्या है, कैसे करता है,
सबको कंट्रोल करना।
कैसे, सबसे पहला उसका मान क्या है अहंकार का, आपको ये दर्शाता है कि आप ये शरीर हो, आप आत्मा नहीं हो। ये अहंकार का सबसे बड़ा जो वैरी है वो इस पे ही आके यहां पे दर्शाता है। अब देखिए, अब जो अहंकार जब रजोगुण से मिलता है, जो कि 31 नंबर का आज का जो श्लोक है, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर ये बताते हैं, उसमें इंटेलिजेंस पैदा होती है। जो इंटेलिजेंस है ना वो रजोगुण के अंदर आती है, वो मेटीरियल इंटेलिजेंस है। और उसके साथ आते हैं 10 प्राणा। उसके अंदर प्राणा, जो मैंने अपने ये बताए थे ना, यहाँ पे जितने भी हैं तन्मात्रास वगैरह, जो जो तमोगुण के अंदर है, उसमें 5 तन्मात्रास और 5 एलिमेंट्स आते हैं। उसमें से तन्मात्रास कौन कौन से हैं, साउंड है, टच है, फॉर्म है, टेस्ट है, स्मेल है। और 5 एलिमेंट कौन से हैं, ईदर है, एयर है, फायर है, वॉटर है, अर्थ है। देखिए, अब ये समझने के लिए ना, क्योंकि इन सब के लिए डीप स्टडी चाहिए, इन सब के लिए पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब ये तीसरा स्कंद जो चल रहा है, मैं जानता हूं कुछ भक्त लोग जो आए वो नए हैं, उनके लिए बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, अरे क्या हो रहा है, हमने कभी सुना नहीं है सब चीजें। पर नहीं, अगर आपने नहीं सुना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब चीजें नहीं है वैदिक शास्त्रों में। जो वैदिक स्क्रिप्चर है वो साइंस को फेल करती है, साइंस कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। साइंस अगर आप देखें, जो कि आज के भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं, अगर उनको ये सब, अगर कोई साइंस का बैकग्राउंड का स्टूडेंट होएगा ना, अगर अगर वो ये सब सुनेगा, ये सब पढ़ेगा ना, कहेगा यार हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं है अपने साइंस में। तो जो साइंस है आपकी, वो इस भौतिक जगत का ज्ञान बताती है। और जो वैदिक साइंस है वो आपको आध्यात्मिक प्लस भौतिक जगत दोनों का साइंस का ज्ञान बताती है। ठीक है, अब साइंस किस बारे में किस चीज को क्लेम करके इतनी प्राउड होती है। लोग बोलते हैं ना, विज्ञान ने ये खोज करी है, ये खोज करी है। आप मुझे कोई भी एक ऐसी चीज बता दें कि विज्ञान ने ये खोज करी है, जो कि ऑलरेडी वैदिक स्क्रिप्चर में ये पहले से ही मेंशन है। जैसे कि हवाई जहाज, हवाई जहाज बोलते हैं ना, हमने इसका आविष्कार किया। आपने क्या आविष्कार किया है, और वो कितनी देर तक चलेगा, जब तक उसके अंदर फ्यूल चलता है, जब तक उसको एक पायलट की जरूरत है, और वो भी एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब वैदिक स्क्रिप्चर्स में देखो कि जो जितने भी देवी देवता पहले के लोग जो थे इस धारा पे, वो अपने कौन से पुष्पक विमान में चलते थे, और उनका विमान किसी पेट्रोल या सर्विस पे नहीं होता था, टायर से चलता था, मन की गति से चलता था, मन की गति से, कुछ सोच भी नहीं सकता कि मन की गति कितनी तेज है। अब यार सोचो अमेरिका, अब एकदम से अमेरिका की सिटी में आपकी छवि आ गई, मतलब मन की गति इतनी तेज है, जो उस गति से चलते थे पहले के विमान। और आज की डेट में लोग मूवियां बनाते हैं, हमारी ये बाइक है, गाड़ी है, बुगाटी है, जो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो फास्टेस्ट कार है। काहे का फास्टेस्ट कार है? योगी है, योगी के पास इतनी बड़ी बड़ी सिद्धि है, जो आज की डेट में अगर आप जाएंगे जहां पे 12 साल में एक बार लगता है अर्ध कुंभ मेला, वहां पे कितने कितने योगी हैं जो बद्री का आश्रम जो हिमालय में रहते हैं वहां पे किसी नदी में डुबकी लगाते हैं और यहाँ पे त्रिवेणी संगम में निकलते हैं। क्या है आपका किस बात का मान है? पहले उनका मान था कि भैया धरती क्या है, फ्लैट है। तो जिस आदमी ने, जिस साइंटिस्ट ने ये स्टेटमेंट दी थी उसको नोबेल प्राइज दिया गया, उसको खूब सारे पैसे दिए गए, मान दिया, सम्मान दिया गया, उन्हीं के फील्ड का आदमी 50 साल 60 साल के बाद आके बोलता है कि नहीं, धरती फ्लैट नहीं है, चिपटी नहीं है, धरती गोल है। भैया शास्त्र तो पहले ही बोल चुका है, वेदो नारायण साक्षात, जो वेद है वो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, वो उनके द्वारा मुख से निकले गए हैं। जिसने वो सृष्टि का निर्माण किया है, जैसे मैं बता रहा हूं क्रिएशन है, भगवान बता रहे हैं, वो खुद ही बोल रहा है कि धरती गोल है, भूगोल बोला जाता है ना, तो वो अपना सैटेलाइट ऊपर लेके गए, फिर देखा हाँ यार धरती तो गोल है। तो किस चीज का मान कर रहा है? वो तो ऑलरेडी स्क्रिप्चर्स के अंदर मेंशन है, आप देखो तो सही इसको पढ़ के, मगर नहीं, वो उसको नहीं करेंगे। इसलिए जो वेदी स्क्रिप्चर्स है वो आपको हर चीज का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं। श्रीमद् भागवतम हर एक गुणीय तत्व के अंदर जाती है कि कहां से कौन सी प्रॉब्लम है इंसान की, क्यों इंसान इस भूति जगत में फंसा हुआ है, सबसे बड़ा कारण क्या है। अलग अलग तरह के लोग सोल्यूशन देते हैं अपने माइंड से। जो आज का जो वर्ष 31 वो 31 और 31 30 बताता है सात्विक अहंकार, और 31 बताता है राजसिक अहंकार। जो राजसिक अहंकार है उसके अंदर होता क्या है, देखिए उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वो एक स्पेकुलेटिव इमेजिनेशन पे चला जाता है इंसान, अपने आप को ये सोचने लगता है। जैसे कि आज के तात्पर्य प्रभात ने लिखा कि एक भौतिक जगत का इंसान अपने इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए अनेकों उपाय करता है, अनेकों बिजनेस करेगा, अनेकों प्लान करेगा, ठीक है कि शिमला जाऊं, नैनीताल जाऊं, ठीक है कसौली जाऊं, या साउथ इंडिया जाऊं, या स्विट्जरलैंड जाऊं, मनाली जाऊं, बाली जाऊं, अनेक तरह के अपने प्लान बनाएगा, पैसे इकट्ठे करने, फैक्ट्री खोलूं, बिजनेस में डालूं, शेयर मार्केट में डालूं। वो जब हर जगह से हताश हो जाता है ना, जब उसका कोई नहीं सुनता है, ना कोई घर में सुनता है, ना कोई बाहर कोई सुनता है, फिर वो अल्टीमेटली अपना ड्रेस चेंज करके बोलता है मैं भगवान हूं, मैं कली का अवतार हूं, मैं विष्णु का अवतार हूं, मैं इसका अवतार हूं, मैं उसका अवतार हूं। तो सोचो ऐसे बंदे की स्थिति क्या है, जो लोग घर पे बीवी बच्चे नहीं सुनते हैं, हस्बैंड नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है, और वो भगवान बन गए हताश होके कि अब भैया कोई मेरा बिजनेस नहीं चला रहा है, कोई मुझसे चल नहीं रहा है, मगर उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो माया के विश्वभूत होके ऐसा कर रहे हैं, कि उनको तत्व नहीं पता, उनको रूट ही नहीं पता है। अभी देखिए एक बहुत ही सुंदर श्लोक है चैतन्य चरितार्थ में, ये बताया गया है कि माया मुग्ध जीवेरे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञाना, जीवेरे कृपा करले कृष्ण वेद पुराना। कि जो इस भौतिक जगत में माया के द्वारा इतनी ज्यादा विषयभूत हो चुका है ना, अपने आप को ये समझ बैठा है कि भैया मैं शरीर ही हूं, और शरीर को भोगने के लिए जितनी सारी वस्तुएं देनी पड़ी, अधिक से अधिक डलो, ठीक है, जब वो उसके विषयभूत हो जाता है ना, उसको यही नहीं पता भगवान श्री कृष्ण एक्चुअल में है कौन, ठीक है ना, उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है, भगवान की रियल आइडेंटिटी क्या है, उनका आपस में संबंध क्या है। तो अब बताओ ऐसे जीव का कल्याण कैसे होगा, ऐसे जीव का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान तो सबके पिता है, अपने बच्चे को देख रहे हैं वो कितना सफरिंग कर रहा है, तो उसकी सफरिंग को कम करने के लिए, उसको इस भौतिक जगत से निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, कृष्णा वेद पुराणा, उन्होंने वेद और पुराणों का निर्माण किया। आप इसको पढ़ो, आप इसको पढ़ो और ज्ञान को अर्जित करो और उस प्रोसेस में ढलो, और प्रोसेस में ढलते हुए मेरे पास यहां पे वापस आ जाओ। अभी आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो शिला प्रभुपाद जी हैं, शिला प्रभुपाद जी ने अपने पूरे जीवन काल में सबसे अधिक जो लेक्चर है, माता जी हरे कृष्ण प्लीज, जो सबसे अधिक जो लेक्चर है ना शिला प्रभुपाद जी ने किस पे दिए, किस सब्जेक्ट मैटर पे दिए सबसे ज्यादा? आत्मा और शरीर पे। क्योंकि जब लोगों को बेस ही नहीं पता होगा, जब उनको एबीसीडी नहीं पता होगी, तो आप दसवीं क्लास का या बारहवीं क्लास का या ग्रेजुएशन का या पीएचडी लेवल का नॉलेज देकर उसका क्या करोगे? आप उनका क्या करोगे? जब बच्चे को यही नहीं पता कि मुझे पेंसिल कैसे पकड़नी है, किताब कैसे खोलनी है, किताब भी सीधी है कि उल्टी है, है लिखना कैसे है, स्पेलिंग कैसे है, आप उसको बोलो भैया तू ऐसे लिख, तू लेटर लिख, तू बड़े बड़े आर्टिकल लिख, वो कहां से लिख पाएगा? तो पहले लोगों को इस जड़ बुद्धि से उठाना है। अभी देखिए, जब शिला प्रभुपाद जी का एक बार एक उनके भक्त ने पूछा, कहते प्रभुपाद जी ये जो हम चार नियम आपने मुझे बताए हैं, ठीक है, इलिसिट सेक्स नहीं करना है, मीट ईटिंग नहीं खाना है, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन नहीं लेना है, और क्या है चौथा क्या है, गैम्बलिंग नहीं करनी है, तो ये करने से क्या हम भक्त हो जाएंगे क्या? तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, आप इंसान बनोगे पहले, आप पहले भक्त नहीं बनोगे, आप पहले इंसान की श्रेणी में तो आओ, आप समझो तो सही। इंसान जब जब हम अपने आप को ये नहीं बोलते शरीर आंख नाक कान दो लाते ऐसे करके, इसको इंसान नहीं बोलते, उसका कल्चर क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी सेवा क्या है, वो करता क्या है इंसान के, पहले आप उस लेवल पे तो आओ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या है। जब वो एक एनिमलिस्टिक लाइफ से जब वो ह्यूमन लाइफ के अंदर आते हैं, तो ही तो अगले को बोलते हैं ना कि भैया अब देखो तो सही आपकी रियल पहचान क्या है, समझे क्या? कृपा जी एक एग्जांपल भी देते हैं, जैसे कि अभी ये रूम है, अभी ये रूम छोटा सा है, ठीक है ना, अभी इसमें मैं इसको लाइट ऑफ कर दूं, कहीं पे भी यहां पे लाइट नहीं आ रही है, ठीक है। अब आप अपने आप को देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आप अपने आप को देखना चाहते हैं, तो जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो अपने आप को सर्वप्रथम कैसे देखेगा? अंधेरे में आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी दिशा कहां पे है, आप उत्तर की तरफ देख रहे हैं, दक्षिण की तरफ, पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, आपके आगे पीछे वाला कौन है, ठीक है, आपको जाना कहां है, रास्ता कहां पे, एग्जिट कहां पे है, आपको कुछ पता है, एकदम पिच डार्क अंधेरा है, पूरा काला घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। तो बताओ अगर वो बंदा अपने आपको देखने का प्रयास करे कि मेरा हाथ कैसे है, अगर आपने अपने को उठा भी लिया ना आप आंख बंद करके, आपको पता नहीं आएगा कि आपका हाथ सीधा है कि उल्टा है। तो इंटेलिजेंट पर्सन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सर्वप्रथम क्या करेगा, उसका पहला कार्य क्या होगा, कौन बताएगा? टच करने से क्या होगा? तो वो अपने देख नहीं सके ना, वो तो छूना है, वो तो एहसास हुआ, देखने की बात हो रही है यहां पे। लाइट जलाएगा, वो सबसे पहले ढूंढेगा लाइट का स्विच कहां पर है, क्योंकि जैसे ही वो लाइट का स्विच आएगा रूम के अंदर लाइट आ जाएगी, उसको लाइट आने के बाद फिर वो अपने आप को भी देख पाएगा, दूसरों को भी देख पाएगा, ये बोलेगा ये दीवार है, ये पंखा है, वो हर चीज डिटेल में देखना शुरू करेगा। तो वैसे ही जो लोग हैं जिनके जीवन में अंधेरा है, सबसे पहले जो लाइट है वो भगवान है, तमसे मार ज्योतिर्गवा, तमसा क्या होता है, तमस अंधेरा, और ज्योतिर क्या है, लाइट है। जब आप लाइट की तरफ आते हैं ना, तो सब सब आपको साफ साफ सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। लाइट का मतलब है यहाँ पे क्या है, ज्ञान, नॉलेज। जैसे ही आप भागवत गीता पढ़ना शुरू करते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू करते हैं, ऐसे नहीं हफ्ते में एक बार या साल में एक बार ही, हर दिन दिन रात जब आपने एक दिन बुक खोली तो आपके दिमाग की लाइट जल गई, जब आपने बुक बंद कर दी साल के बाद खोली तो साल के लिए तो आपकी दिमाग की लाइट बंद ही थी ना। तो दिमाग की लाइट को हमेशा ऑन करने के लिए आपको हमेशा प्रभुपाद जी की बुकों को ऑन करना ही पड़ेगा, और नित्यम भागवत से क्या, जहां आपने बुक बंद करी आपका माइंड भी ढक, वो भी ऑफ हो जाएगा, आप अंधेरे में चले जाएंगे। तो जैसे ही आपने लाइट ऑन करी आपको सब कुछ दिखने लगा, वैसे ही जैसे आप कृष्ण भागवत में आए आपको सब कुछ साफ साफ क्लियर देखने लगा। ये लोग बोलते हैं पहले सेल्फ रियलाइज बनो फिर गॉड रियलाइज बनो, नहीं, सेल्फ मतलब पहले अपने आप को देखो फिर भगवान को देखो। अरे भैया जब अंधकार के अंदर है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया लाइट को ऑफ करने का, जब इंसान पहले अंधकार है तो पहले अपने आप को कैसे देखेगा, वो उसको पता ही नहीं है वो कौन है, तो देखेगा कौन, वो अपने आप को कैसे देख सकता है। तो इंटेलिजेंट पर्सन है वो लाइट की तरफ भागता है, तो जैसे ही वो भगवान की तरफ भागता है ना तो भगवान के बारे में जानना शुरू करता है, जानते जानते उसे अपने आप के बारे में पता लग जाता है कि एक्चुअल में कौन है वो। जीवेरे स्वरूप होवे कृष्णेरे नित्यादास, ये हमारी रियल आइडेंटिटी है कि भगवान के नित्य सेवक होना, उनके जो वैष्णव जो भक्त लोग हैं उनके नित्य सेवक होना। क्यों? मगर हमारा क्या है, हम माया के सेवक हैं। अगर भागवतम नहीं खुली है, लाइट नहीं ऑन हुई है, तो हम किसकी सेवा कर रहे हैं अंधेरे में, हमें पता ही नहीं है। ये सेवा अंधेरे में तो हो रही है, ठीक है, अपनी इंद्रियों की, अपने शरीर की, घर परिवार की, समाज की है, कल्याण की, देश की, इधर उधर की, और जिसकी भी सेवा करो हर सेवा से आपको लाभ ही मिलती है। देखो ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी कुछ लोग यहाँ पे यंग भी हैं, कुछ यहाँ पे बूढ़े लोग भी हैं, उनसे भी पूछ लो, दोनों कैटेगरी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो ये सोचने की नहीं प्रभु जी आप झूठ बोल रहे हैं, तो उनसे पूछ लो जो अभी 80 साल 70 साल 75 साल के हो चुके हैं, कि जिस जिसको उन्होंने अपनी सेवा से खुश करने की कोशिश करी उनको एक बहुत ही फेमस लाइन है सुनने को मिली, आपने हमारे लिए किया ही किया। मतलब पूरा जीवन चला गया माँ का सेवा करते करते, आपने किया ही किया, पिता का किया, किया ही किया। क्यों? क्योंकि आपने गलत जगह पे अपने एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी कि ये बच्चा बड़ा होकर मुझे सुख देगा। करो, दिक्कत नहीं है, आए हो और बच्चे हैं, सेवा करो, मगर सर्वप्रथम जो सेवा थी जिसके लिए आपको ये मनुष्य शरीर दिया गया था, आपने वो ड्यूटी पूरी नहीं करी है, इसलिए आप अंदर से रो रहे हैं, इसलिए आप अंदर से रो रहे हैं। क्योंकि इसी तीसरे स्कंध में देखेंगे, सॉरी दूसरे स्कंध के स्टार्टिंग में बताते हैं कि जो एक भौतिकवादी पूरा असक्त व्यक्ति होता है ना, वो क्या सोचता है कि आज मैं जवान हूं, आज मेरे अपने घर परिवार की अच्छे से सेवा करने दो, खूब जी भर के सेवा करने दो, क्योंकि मेरे अंतकाल में ना ये लोग मुझे बचाएंगे, मेरे जो सोल्जर्स हैं, मेरी बीवी, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे नाते, मेरे नाते रिश्तेदार, समाज, कोई नहीं आता है, उसे सब अकेले सफरिंग करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन सबको पालने में उसने जो जो बुरे बुरे कर्म किए हैं ना, उन सबको भोग उसे आखिरी समय में और उसके अगले जन्म में भी उसे भुगतना पड़ता है, तो उसे एंड में अकल आती है कि काश मुझे पहले आ गई होती। इसीलिए ये भागवत है, भागवत गीता को ये मंदिरों में रखने के लिए, अगरबत्ती करने के लिए नहीं है। ठीक है, जिसके घर में है तो ऑस्पिशियस तो है ही है, शुभ तो आएगा इसके घर में, मगर और अधिक शुभ आएगा जब इसे कोई इंसान पढ़ के खोलेगा, पढ़ेगा और उसको अपने जीवन में उतारेगा, नहीं तो वैसे ही देखना वो रोता फिरता रहेगा जन्म जन्म तक यहाँ पर। तो इसी इसी लय को, इसी को समझाने के लिए इसी तात्पर्य रूपा जी लिखते हैं, वो हमेशा पागलों की तरह घूमता है कि देखो मैं भगवान। अभी देखो ना, जो इंसान पागल हो जाता है वो कुछ भी बड़बड़ाता रहता है। देखा है, बॉल बॉल के सामने खड़ा हो जाएगा, कुछ भी बोलता है, बड़ा 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 कुछ भी बोलेगा, गालियां निकालेगा, कुछ भी करेगा, लोगों को मिलेगा, ईट ईट पत्थर मारना शुरू कर देगा, ये सब करने लग जाएगा, तो लोग बोलते हैं प्रभु जी ये पागल है। अरे वो तो अपने लेवल का पागल है, तू भी पागल है, वो अपने लेवल का पागल है, वो तो है ही है, पर तू भी एक आध्यात्मिक जगत की नॉलेज की तरफ से देखेगा तो तू भी पागल है, क्योंकि समझ वो भी नहीं रहा है कि जीवन का मूल्य क्या है, समझ तू भी नहीं रहा है जीवन का मूल्य क्या है। अब वो ये है कि वो 100% पागल है और आप 10% 20% या 50%, मतलब जिसने भी मनुष्य जीवन पाके अपनी भक्ति नहीं करी है तो वो 100% पागल ही है। अब एक पागल दूसरे पागल बोले गुरु जी पागल है, एक पागल दूसरे पागल को पागल बोले तो तू क्या है। भौतिकवादियों के लिए जो भगवान की सेवा में लगे हैं भक्त, वो पागल है, और भक्तों के लिए जो भगवान की सेवा में नहीं लगा वो पागल है। तो यहां पे सब के सब पागल ही हैं। आप मैं आपके लिए, आप मेरे लिए, पर अगर भागवतम उठाएंगे, इसको पढ़ेंगे नित्य, तो आपको असली पढ़ेंगे असली पागल कौन है। जिस किसी ने भी पूरा का बिना चार्य, बिना भगवान के माला के, बिना भगवान के दर्शन के, बिना भगवान के भक्तों की और उनकी सेवा के, ठीक है, बिना भागवतम पढ़े, भागवतम पढ़े बिता दिया ना, वो इंसान पागल ही है। और ये सबसे अधिक ये जो होता है ना दुख भगवान को तभी होता है। ये क्रिएशन का एकमात्र उद्देश्य भगवान इसके पहले के 3-4 श्लोकों में बहुत सुंदर बताते हैं कि मैंने ये क्रिएशन का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य मेरा ये है इस भौतिक जगत का निर्माण करने का, कि जो जो जीवा इस जगत में फंसी हुई है उनको एक अवसर दिया जाए ताकि वो मेरे धाम वापिस आ सके। जब वो नहीं आती है ना, तो हम 5वें स्कंद के आखिरी में जो एक चैप्टर है जिसमें है अनंत देव की ग्लोरीज, जो भगवान अनंत देव है जो कि सांप के रूप में है, अनंत शेष के रूप में है, उनको बताया गया उनके सर पे जो एक एक ब्रह्मांड है ना वो एक 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 सरसों के दाने की तरह है। तो जब वो देखते हैं ना कि इतना चांस दिया गया इस आत्मा को, इतना चांस इस आत्मा को दिया गया, ये फिर भी भगवत धाम नहीं गिना, तो वो गुस्से में आकर उसे भस्म कर देते हैं पूरी सृष्टि को। अभी देखिए ना, दो तरह की होती है सृष्टि, ठीक है, और एनिहिलेशन क्रिएशन दो तरह के होते हैं। एक होता है जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है तब वहां से शुरू करते हैं ब्रह्मा जी, ठीक है, और दूसरा जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो उसके बाद उठने के बाद वो फेर करते हैं, ठीक है। तो सोचो कितनी बारी है, उनका लाइफ स्पैन देखो कितना बड़ा होता है, हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। हमारे कैलकुलेशन में, हमारी कैलकुलेटर में, कंप्यूटर में वो कैलकुलेशन आएगी ही नहीं आएगी। इतना समय देने के बाद एक जीवा को, वो तब भी अगर भगवत धाम नहीं जाता है ना, तो इतने गुस्सा होते हैं अनंत शेष जी कि उसे जला देते हैं अपने मुख की अग्नि से। तो इसलिए भगवान बोलते हैं ये क्रिएशन का एकमात्र उद्देश्य मेरा ये है कि मुझे जितने भी मेरी जीवा हैं उन सबको चांस दिया जाए, या तो वो खुद आते हैं या तो वो अपने किसी अपने जो शुद्ध भक्त हैं उनको यहाँ पे भेजते हैं प्रचार करने के लिए, लोगों को बताने। जो समझदार है वो तो ले लेता है, जो समझदार नहीं है ठीक है ये फोन वाले अच्छा तो बोलते हैं, 1-2 घंटा चला जाता है, ठीक है, घर में बहू डांटती है, दामाद डांटते हैं, सब डांटते हैं, चला जाता, खाने को दे देते हैं, ठीक है चलेगा, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, आप प्रभु जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप करते रहिए, मैं तो पापी हूं, मैं तो धरती में ही रहना चाहता हूं। देखिए ऐसे जड़ बुद्धि इंसान का क्या कर सकते हैं, वो पागलपन की अपनी आखिरी हर सतह पार कर चुका है, ठीक है। कहने के लिए बहुत कुछ है, अभी 5 मिनट बचे हैं, तो अगर किसी बात का कोई प्रश्न है तो मैं अभ्यास करूंगा उसका उत्तर देने का। क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्सपेंशन सेकेंड एक्सपेंशन, व्हाट इज इट्स कॉल्ड, क्योंकि फर्स्ट एक्सपेंशन है, जैसे भगवान श्री कृष्ण है उनके राइट हैंड साइड से बाहर निकलता है बलराम जी, ठीक है, उनके फर्स्ट है, सो बलराम जी आगे जॉब को लेके जाते हैं, उनसे निकलते हैं फर्स्ट चतुर्व्यूह, उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रपल एक्सपेंशन, जिसमें वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है। तो जो उसमें जो फर्स्ट है संकर्षण, उनसे बाहर निकलते हैं नारायण जी, तो नारायण जी से निकलते हैं सेकंड चतुर्भुवा, विच इज वी सेट सेकंड क्वाड्रपल एक्सपेंशन, उसमें फिर वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न एंड अनिरुद्ध, तो जो सेकंड संकर्षण है उनसे निकलते हैं महाविष्णु जी, उनको बोलते हैं महासंकर्षण। सेकंड संकर्षण को बोलते हैं महासंकर्षण, उनसे निकलते हैं महाविष्णु। जो फर्स्ट संकर्षण है उनको बोलते हैं मूल संकर्षण। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ये हम लोगों ने स्टडी किया था अपने भक्ति वैभव के अंदर, मतलब कि इसलिए प्रभुपाद जी ने ये जो कोर्सेज हैं ये इसलिए डिजाइन कर रहे हैं कि आप भक्ति शास्त्री को अच्छे से पढ़िए, एग्जाम दीजिए भक्ति वैभव को, इन सबको, तभी आपको, जब आप अंदर जाएंगे ना, डीप जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तभी आपको भगवान के जो रूप गुण लीला है उनको अध्ययन करके आपको पता लगने लगेगा, आप भगवान के और करीब जाते जाएंगे। इस्लाम जोर से बोले गुरु जी, माइक है क्या हमारे पास? इस्लाम वाले बोलते हैं वी आर सर्वेंट ऑफ गॉड, हाँ नहीं अच्छा है ना, तो ठीक ही तो बोल रहे हैं वो भी, एटलीस्ट वो ये नहीं बोल रहे हैं आई एम गॉड, वो ये बोल रहे हैं सर्वेंट ऑफ द गॉड है, हम भी तो ये बोल रहे हैं, जीसस क्राइस्ट थे वो भी सेम यही बोल रहे हैं कि आई एम द सन ऑफ द गॉड, ठीक है। इस्लाम वाले बोलते हैं कि हम लोग भगवान के सेवक हैं, जो जो भगवद गीता बोलती है वो भी ये बोलती है हम लोग भगवान के सेवक हैं, और भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं मैं भगवान हूं, क्लियर, अच्छी बात है। देखिए जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे भगवद गीता है, श्रीमद भागवतम है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहब है, बाइबल है, इन सबका एकमात्र उद्देश्य है कि उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको भगवान के करीब लेकर जाए, ठीक है, और भगवान का उनको सर्वेंट बनवाए। अभी जैसे कि अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम है उनके टीचर्स में, टीचर उसको सही तरह से उसको लोगों को बता नहीं रहे हैं, और लोगों को भी हिम्मत नहीं है कि बाइबल को, कुरान को, या इन सबको हाथ में पढ़ के ना भागवत को खुद पढ़े कहां पे क्या बोला गया। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं साधु गुरु और शास्त्र इन सबको मिला के हमें खुद पढ़ना है। अब हम सुन लेते हैं कोई ऐसा है पागल है लीडरशिप के रोल में आ गया है तो लोगों को मिसगाइड कर रहा है। किसी भी शास्त्र में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपको दूसरी जीवा के साथ अत्याचार करना है, उनको माना है, खाना है, उनके साथ बुरा व्यवहार करना है, कोई भी शास्त्र सब यही बोलते हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, हमें एक दूसरे का सहायता करना है और इस भौतिक जगत से निकलना है। तो सारी प्रॉब्लम आती है उनके टीचर्स में, क्योंकि वो सही तरीके से सही ढंग से उनको बता नहीं रही है कि कुरान क्या बोलती है, गुरु ग्रंथ साहब क्या बोलती है, बाइबल क्या बोलती है, और भागवत गीता क्या बोलती है। सबका अपना अपना उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को माइक पर चढ़ के बोल देते हैं, हाँ भाई भागवत गीता ये बोलती है, हम जी सर जी आपने बोला भागवत गीता यही बोलती है। अरे कहाँ बोल रही है, पूछो तो सही कौन सा श्लोक है, कौन सा कोट है, कहाँ से है, वो नहीं पूछेंगे, वो प्रॉब्लम इज देयर। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप बता रहे थे मटीरियल प्लेस और उस क्रिएशन में जो
आठ तत्व जो चर्चा की
है,
और आठ आठ तत्व
एलिमेंट्स
मटीरियल प्लेस,
हाँ हाँ जो आज आठ नाग कान, हाँ जी,
क्रॉस एंड सटल एलिमेंट्स,
बिल्कुल।
तो उसमें जो आप बता रहे थे वो 10 times bigger है,
10 times bigger है,
तो वो bigger का क्या पैरामीटर है, वो कैसे bigger है, मतलब क्या उसको क्या कहते हैं, मतलब एग्जैक्टली समझना चाहता
हूँ। उसे लेयर के हिसाब से बताया गया है और उसका मेजरमेंट आई थिंक ये कैंटो 2 या कैंटो 5 की कहीं पे तो है, उनका एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है, जैसे कि मान लो कि माइल्स में है, कैसा है कैसा है, उनकी जो सतह है वो एग्जैक्टली उसके अंदर मेंशन है एग्जैक्टली। अब मेरे को ऐसे तो नहीं पता कितना है, पर ये जान लीजिए कि जैसे जैसे कि धरती है, धरती का सबसे आखिरी लेयर है, उसके ऊपर का लेयर है पानी का, जो पानी का और जो धरती के बीच में है ना, उनका जो भी किलोमीटर है उसके ऊपर वाला वो 10-10 गुना है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से 10-10 गुना ऊपर है। मान लीजिए कि वो एक पर है तो पानी आ जाएगा वो 10 पे, जो उसके ऊपर वाला है वो उस पे आ जाएगा 100 पे, उसके ऊपर वाला आ जाएगा 1000 पे। तो ऐसे करते करते जो फॉल्स सीवियो है वो कहीं ज्यादा में आ जाते हैं, मतलब उसको तोड़ पाना, उस फॉल्स सीवियो को तोड़ पाना, और जो फॉल्स सीवियो के इंचार्ज है ना वो संकर्षण भी है। सॉरी प्रभु जी, 5th में दिया हुआ है कैंटो के अंदर नहीं प्रभु जी, ऐसे आप ये सोल के ऊपर कह सकते हैं कि सोल पे कहना क्या है, ये एक्चुअल में है ही है कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि फॉरन में क्या होता है कि अगर आप किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं ना, तो फैक्ट्री में जाने के लिए 4-5 स्टेजेस होती है। मान लीजिए कि कोई केमिकल की फैक्ट्री है या कोई वॉशिंग पाउडर की फैक्ट्री है, तो जब मैं वहां पे 14 साल था, तो जब मैं मुझे इंट्रोडक्शन के लिए वहां पे लेके गए अंदर इंडक्शन के लिए, तो जब मैं पहले गेट पे पूछा ना, उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रभु जी कि आप कौन है, आपका क्या नाम है, आप क्यों आए। मैंने बताया मैं इसलिए आया हूँ, तो उन्होंने बोला ये आईडी कार्ड लो, उस पर लिखा हुआ था कि विजिटर्स, ठीक है। मैं आगे वाले गेट पे गया, उसको थोड़ा सा आगे चला, अगले वाले गेट पे गया, तो उन्होंने बोला कि आप अंदर जा रहे हैं, हाँ जी, तो आपको ये चश्मा पहनना पड़ेगा, गॉगल्स व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट, क्योंकि आंखों में आकर चला जाएगा केमिकल। मैंने कहा ठीक है जी, फिर तीसरी वाली में गया, उन्होंने बोला आपको स्टील शूज पहनने पड़ेंगे क्योंकि वहां पे चलती है फोक लिफ्ट। मैंने कहा ठीक है जी, वो भी पहन लिया। चौथी वाली पे गया, उन्होंने मुझे बोला क्या हाई विजिबिलिटी वेस्ट पहननी पड़ेगी। ठीक है, तो अलग अलग जैसे जैसे स्टेज में चलता है। फिर मैं फैक्ट्री के अंदर गया, तो वैसे ही जब आत्मा है, जब इस आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में उतरती है ना, तो भगवान पूछते हैं आप कहां जा रहे हो। कह जी मैं वहां पे जा रहा हूं। अच्छा ठीक है जी, तो ऐसा करो आप ये फॉल्स ईगो पहनो, उसके बाद फॉल्स ईगो को पहनोगे आगे जाओगे इंटेलिजेंस को पहनो, माइंड को पहनो, उसके बाद एक एक करते 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 तब हम इसमें आते हैं। और जब आत्मा जब वापिस जाती है और जब मैं उस फैक्ट्री से बाहर निकला, तो जिस जिस स्टेज पे गया था ना, तो सबसे पहले आई हाई विजिबिलिटी, वो मैंने उतार दी। ठीक है, उसके बाद आई स्पेक्स, मैंने वो उतार दिया, लो प्रभु जी ये आपका स्पेक्स है। उसके बाद आया मेरे शूज, मैंने ले भी अपना शूज उतार लो। एंड में आया ये मेरा आईडी कार्ड है, ये भी उतार लो। तो आत्मा ऐसे चली गई। तो जो आत्मा है जब वो इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में भी जाती है, तो पहले धरती है जो अर्थ है उससे बाहर निकलती है। ठीक है, पानी है, आग है, वायु है, स्पेस है, माइंड है, इंटेलिजेंस है, तो आखिरी में आकर अटक जाती है फॉल्स ईगो में। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये बहुत मुश्किल है इसको तोड़ पाना, क्योंकि इसी जो थिकनेस है ना, अगर मैं आपको बताऊं जैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से 10 गुना ऊपर है, इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ही है जो कि संकर्षण के रूप में है, और जो ये भी बताया जाता है उनके सेवक कौन है, भगवान शिव। भगवान शिव के पास भी अधिकार है, वो भी फोर चीकों को काटते हैं, क्योंकि वैष्णव नाम यथाशंभु, तो हमें उनसे भी प्रार्थना करनी है भगवान से, खाली वो ही फोर चीकों को काट सकते हैं, क्योंकि वो आखिरी लेयर है भौतिक जगत और इसकी आध्यात्मिक जगत की। जब वो एक बार टूट गई, आत्मा सीधा भगवान आ गए। तो इस आत्मा के ऊपर भी ये है, क्योंकि पंच महाभूत है स्थूल के, और अंदर सूक्ष्म भी है, माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो, तो इसने भी पहन रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमें निरंतर इस बात को याद करना है कि हम कौन है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये प्रोग्राम बनाया है ना, मॉर्निंग के भागवतम, अर्ली मॉर्निंग चैंटिंग करना, गुरु की पूजा करना, ठीक है, और इसके बाद भी पूरे दिन पढ़ना, ये इसीलिए कि हर दिन हम भूल जाते हैं। अगर मैं आज पहली बार यहाँ पर आया, सेकंड टाइम आया, तो मुझे कुछ कुछ चेहरे हैं याद हैं, मगर अगर मैं आता रहूंगा तो मुझे सबके चेहरे याद हो जाएंगे। मगर अब मैं इसके बाद अगर मैं 5 साल के बाद आऊं, 10 साल के बाद आऊं, तो मैं भूल जाऊंगा। तो वैसे ही नॉलेज है, अगर आप एक दो दिन तक नहीं पढ़ेंगे, जैसे आपने देखा ना नित्यम भागवत सेवा, तो ये जो सेवा है, ये जो भागवत, और एक भक्त भागवत है, बुक भागवत है, तो हमें हर दिन करनी है। इसी सेवा से हमें याद आएगा कि हमारी असली पहचान क्या है और भगवान असल में कौन है, वरना हम भूल जाएंगे। देखना, अगर अभी आप लोगों ने कुछ सुना है या मैंने कुछ बोला है ना, और ये जाके मैं आपको शाम को आके पूछूं प्रभु जी आपने क्या सुना और मैंने क्या बोला, दोनों भूल चुके होंगे। कुछ तो बोला था, अच्छा था, कुछ तो बताया था, मगर याद नहीं था, कुछ तो बताया था, कुछ यही है। इसी भूलेपन को याद करने के लिए श्रीमद् भागवत हम दे गई है, हर दिन पढ़ना है। तो ठीक, और किसी का, चलिए श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निकाय गौर प्रेमानंदे श्री श्री राधा वल्लभ की जय।